महाबंध पुस्तक दूसरी लेक्चर नंबर 12। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमः, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वर्षायाणं, नमो लोये सर्वसाहूणं, भूतबलि प्रणीतं तं बन्धतत्त्वप्रकाशकम्, महाधवल विख्यातम् महाबंधम नमाम्यहम्। आचार्य श्री भूतबलि भट्टारक प्रणीत यह महाबंध नाम का सिद्धांत शास्त्र है, जो षटखंडागम का 6 नंबर का खंड है। इसमें अभी हम दूसरा स्थितिबंध अधिकार देख रहे हैं और दूसरी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 48 पर आ गए, 48। अभी तक तो हमने अद्धाचेत यानी कितना स्थितिबंध होता है उत्कृष्ट जघन्य उसकी बात की थी। उसके बाद वो सर्व नौ सर्व उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट जघन्य वगैरह आदि अनादि सादि अनादि वगैरह बात देख ली थी। उसके बाद स्वामित्व देखा हमने विस्तार से और अभी बंध काल की प्ररूपना चल रही है। यानी पहले ओघ में कल हमने देखा था 47 पेज पर के 7 कर्मों का जो उत्कृष्ट स्थितिबंध का काल कितना है। हाँ, तो एक समय से लेकर अंतर्मुहूर्त तक, और अनुत्कृष्ट का जघन्य काल अंतर्मुहूर्त है। मार्गणाओं में एक समय घटित होगा, मान लेते वो नरक नरक की बात है, तीर की बात है, तो मरण के एक समय छोड़कर सेकंड समय में उपांत समय में उत्कृष्ट किया तो एक समय के अनुत्कृष्ट करके मर गया, तब वो मार्गणा में संभव है, पर ओग में संभव नहीं है। यानी अनुत्कृष्ट लगातार अंतर्मुहूर्त तो होगा ही होगा। और उत्कृष्ट काल अनंत काल है, ये जब तक वो उत्कृष्ट नहीं करेगा तब अनुत्कृष्ट ही होता रहेगा, क्योंकि उत्कृष्ट संगी पंचेन ये पर्याप्त मिथ्या दृष्टि साकार जागृत वगैरह वो करता है, वो एक इंद्रिय में चला गया तो अनुत्कृष्ट तो लगातार होता ही रहेगा, इसलिए वो उत्कृष्ट काल उसका असंख्यात पुद्गल परिवर्तन बताया। अब आयु का जो है काल की बात है तो अंतर्मुहूर्त तो उसका बंध होता ही होता है, तो उसके उत्कृष्ट स्थिति बंध का काल एक समय बताया। एक समय क्यों? क्योंकि आबाधा को लेना है, तो आबाधा का पहले समय में आबाधा उत्कृष्ट होगी, बाद में एक एक समय से आबाधा घटेगी। उत्कृष्ट स्थिति बंध के लिए उत्कृष्ट आबाधा लेते हैं, ये कंडीशन है। तो उसके पहले समय में उत्कृष्ट होता है, और अनुत्कृष्ट स्थिति बंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है, यानी उसके कोई भी स्थिति बंध ही अनुत्कृष्ट हो रहा है। हाँ, लगातार बंध कितना होता है? हाँ, तो उतना ही लेना है। 8 बार भले बन जाए पर 8 में 8 का मिलकर अंतर्मुहूर्त 8 बार का ऐसा नहीं लेना उसका अर्थ। काल का अर्थ क्या होता है? लगातार कितने काल तक बंध है, ऐसे पूरे लाइफ टाइम में अंतर्मुहूर्त अंतर्मुहूर्त छोड़कर भी उत्कृष्ट भी करता रहा तो सबको नहीं गिनना है, वहां लगातार है उसी को काल कहेंगे। किसका? आयु कर्म के उत्कृष्ट स्थिति बंध का जघन्य काल है, जघन्य स्थिति बंध का काल नहीं। हम उत्कृष्ट बंध का जघन्य काल और उत्कृष्ट काल एक समय, क्योंकि पहले ही समय में वो उत्कृष्ट घटित होता है, बाद में आबाधा कम हो जाती है। यानी उसको जघन्य कितने काल तक उत्कृष्ट रहेगा तो पहले एक समय में, और लगातार कितने तो एक ही समय में रहता है, उसी को जघन्य कहो उसी को उत्कृष्ट कहो। उत्कृष्ट का उत्कृष्ट काल एक ही समय होगा, उससे ज्यादा होगा ही नहीं, क्योंकि पहले ही समय में उसको उत्कृष्ट कहना है। जघन्य काल उत्कृष्ट स्थिति, आयु के उत्कृष्ट स्थिति बंदे का जघन्य काल कितना है? एक समय, उससे ज्यादा होता ही नहीं, उसी को उत्कृष्ट कहेंगे हम। उत्कृष्ट भी एक ही समय कहेंगे, इसी का पुनः उन्होंने विशेषार्थ बताया। अभी उसको छोड़कर आगे बढ़ते हैं, 48 पृष्ठ पर आते हैं हम अभी। आदेश से यानी अलग अलग मार्गणाओं में बताएंगे वहां स्थितिबंध उसका काल। नारकियों में 7 कर्मों के उत्कृष्ट स्थितिबंध का काल ओघ के समान है, यानी एक समय से अंतर्मूर्त। अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य काल एक समय, एक समय अभी मैंने बताया ना कि मरण के पूर्व में उपांत समय में उत्कृष्ट स्थितिबंध किया और फिर अनुत्कृष्ट किया और मर गया, तो नारकी में अनुत्कृष्ट का एक समय घटित हुआ। ओघ में तो अंतर्मूर्त तक अनुत्कृष्ट करके ही फिर उत्कृष्ट करेगा वो। ख्याल में आई बात ये एक समय की? हाँ। आयु कर्म का काल ओघ के समान है, द्विचरम समय में उसने उत्कृष्ट किया, एक समय अनुत्कृष्ट किया, मरण के समय में अनुत्कृष्ट किया, उसके पूर्व में उसके उत्कृष्ट किया था, तो एक समय के लिए अनुत्कृष्ट हुआ। एक समय जो है वो मरण का समय है, उसके पूर्व में उत्कृष्ट किया था। आयु कर्मता तो होता ही, तो एक समय के लिए उत्कृष्ट होता है। इसी प्रकार 7 पृथ्वियों में जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि यहाँ 7 कर्मों के अनुत्कृष्ट स्थिति में, देखो अनुत्कृष्ट का जघन्य तो एक समय हमने घटित किया, पर यह भी हो सकता है कि पूरे उनके नारकी के पूरे भव तक, पूरे लाइफ टाइम तक उसने उत्कृष्ट किया ही नहीं, क्योंकि करने की कोई जरूरत नहीं है। तो पूरे जितनी उस नरक की जितनी स्थिति है उतना उसने अनुत्कृष्ट ही बंद किया, तो पहले नरक से 7वें नरक तक वहां की जो उत्कृष्ट स्थिति है उतना उसके अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का उत्कृष्ट काल है। ख्याल में आई बात ये? देखो फिर से, इतनी विशेषता है कि यहाँ अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का यानी 7 कर्मों के अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का उत्कृष्ट काल अपनी अपनी स्थिति प्रमाण कहना चाहिए। अपनी स्थिति यानी उस नरक की जितनी उत्कृष्ट आयु है उतना समझना है, क्योंकि नारकी इन जनरल उन्होंने 33 सागर बता दिया, परंतु वो 7वें नरक में घटित होता है, पर पहले दूसरे तीसरे उसकी जो उत्कृष्ट आयु है उतनी वहां ले लेना है। विशेषार्थ, यहां सामान्य से और प्रत्येक नरक में अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का उत्कृष्ट काल अपनी अपनी स्थिति प्रमाण कहा है। सो इसका कारण यह है कि जिस जीव ने पूर्व भव में उत्कृष्ट स्थितिबंध करने के बाद अनुत्कृष्ट स्थितिबंध किया, इसके बाद वह मरकर नरक में गया और वहां निरंतर अनुत्कृष्ट स्थितिबंध करता रहा। मुझे ये सवाल है कि पूर्व भव में उत्कृष्ट करने की क्या जरूरत थी उसको, यानी कब किया, क्या किया, उसकी जरूरत नहीं है क्यों? क्योंकि उत्कृष्ट करना ही चाहिए, ऐसी बात नहीं है। नरकाची तो पूर्व भव में उसने अनुत्कृष्ट करके आया है, ये बताने की जरूरत नहीं थी मेरे मन। उसने नरक में अनुत्कृष्ट बंद किया थ्रू आउट, बस इतना ही है, उत्कृष्ट किया ही नहीं, बस इतना ही बताना था। हाँ, कहीं से मरकर नरक में गया, परंतु पहले उत्कृष्ट बंद किया फिर अनुत्कृष्ट किया, आयु के लिए क्या लागू होगा? नहीं नहीं, वहाँ उदय वहाँ नहीं, बात बंद कहाँ था वहाँ पर, हमें वो तो बनते समय आयु की बात नहीं है, पर 7 कर्मों की बात रहे। देखो देखो, हाँ, अरे नारके नहीं तो वो तो समझ में आवे, पर नरक में जब से जन्मा है उसने अनुत्कृष्ट बंध किया, बस यही कारण है उसका, और कुछ कारण नहीं है। यानी पूर्वों में उत्कृष्ट करके अनुत्कृष्ट किया फिर जन्मा, ये बात बताने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि पूर्व भव ने अंतिम समय भी अगर उत्कृष्ट करता तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नरक में अपर्याप्त अवस्था में आने पर अनुत्कृष्ट तो हो ही जाता। नरक में पहले समय से कोई उत्कृष्ट नहीं करता, नरक में रहते हुए उसने उत्कृष्ट स्थितिबंधन नहीं किया, ये एकमात्र कारण है उसका। ये पहले वाला क्यों यहाँ लिया पता नहीं चला मुझे। उसके कोई बताने की जरूरत भी नहीं थी। हाँ आगे बढ़ते, इस प्रकार अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का उत्कृष्ट काल प्राप्त हो जाता है। परंतु उन्होंने एक समय की बात यहाँ एक्सप्लेन नहीं की है, आगे सर्वत्र अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का उत्कृष्ट काल इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए। यानी उस मार्गणा में रहने का उत्कृष्ट काल है, वहां उसने उत्कृष्ट किया नहीं अनुत्कृष्ट ही किया थ्रू आउट। आगे बढ़ते हैं, तीर्यंचो में ओग के समान काल है, यानी उत्कृष्ट का एक समय से अंतर्मूर्त और अनुत्कृष्ट का, हाँ जगन तीर्यंचो में रहते हुए, तीर्यंचो में भी जघन्य उनको एक समय हो सकता है, अनुत्कृष्ट का जघन्य काल एक समय होगा। नहीं, तीर्यंचो में अनुत्कृष्ट ओके समान क्यों कहा, मार्गणा में ओग के समान काल लिखा यहाँ तिरिखेसो ओघम। यानी वो अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट काल ओग के समान होगा, उत्कृष्ट काल असंख्यात पुद्गल परावर्तन, अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट काल घटित होगा, पर अनुत्कृष्ट का जघन्य काल एक समय होना चाहिए। ओग के समान जो लिखा है ना, परंतु अनुत्कृष्ट का ओग में जघन्य काल अंतर्मूर्त कहा था, पर यहाँ एक समय लेना चाहिए विशेषात में लिखा, यानी अनुत्कृष्ट का यहाँ लिखा ना जघन्य काल एक समय, क्योंकि तीर्यंश से अन्यत्र चला गया ना, नरक में गया। अभी हम देखते हैं ना, उत्कृष्ट स्थिति बंद किया एक समय को, अनुत्कृष्ट किया और फिर नरक में गया मान लेते हैं, तो तीर्यंच में एक समय हो गया ना उसका। या नरक में जाने की भी आवश्यकता नहीं ना कहीं पर भी, या उनको ऐसा कहना है क्योंकि ऊपर देखो कुछ तो छूट रहा है। सामान्य तीर्यंचों में पेज नंबर चल रहा है 48 और अपने मार्गणाओं की बात चल रही है। तीर्यंचों की बात अभी हमने शुरू की, नरक की बात हमने पढ़ी थी। तीर्यंचों में कहते ओग के समान काल है, तो ओग के समान उत्कृष्ट का काल तो एक समय से लेकर अंतर्मूर्त देखा था, परंतु ओग में हमें अनुत्कृष्ट का जघन्य काल अंतर्मूर्त देखा था। तो तीर्यंचो में जो अनुत्कृष्ट का अंतर्मूर्त देख रहे हैं, उन्होंने पंचेंद्रिय तीर्यंच में ले लिया, उन्होंने तो तीर्यंचो में क्यों नहीं लिया। पंचेंद्रिय तीर्यंचों में घटित होता है तो तीर्यंच इन जनरल में भी कहना चाहिए था। देखो यहाँ लिखा है ना ओग के समान बताए तीर्यंचों में, उत्कृष्ट का तो एक समय से अंतर्मूर्त हुआ, अनुत्कृष्ट का भी एक समय होना चाहिए, क्योंकि तीर्यंच में उत्कृष्ट किया एक समय के लिए, अनुत्कृष्ट किया फिर अन्य मार्गणा बदल गई, हो सकता है। अभी आगे बढ़ेंगे तो क्लैरिटी हो जाएगी। पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक, मनुष्य त्रिक, त्रिक लिया नहीं यहाँ पहले हमने देखा था, यानी उत्कृष्ट बंद करने वाले कौन कौन होते हैं, सामान्य देव और सर्वार सिद्धि तक के देवों में, वो अपना अपना उत्कृष्ट अलग होगा। सात कर्मों के चाहिए, सात कर्मों के उत्कृष्ट स्थिति बंध का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, ये तो सर्वत्र ऐसा ही लागू होता है। अनुत्कृष्ट स्थिति बंध का जघन्य काल एक समय है, क्योंकि मार्गणा बदल जाएगी तो एक समय घटित होता है, और उत्कृष्ट काल क्रम से, यानी अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट काल, समझ में आती बात, यानी उसने उत्कृष्ट किया ही नहीं, अनुत्कृष्ट ही करता रहा, तो पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक में पूर्वकोटि पृथक्त्व अधिक तीन पल्य, यानी पंचेंद्रिय पहले पंचेंद्रिय तिर्यंच इतना कहेंगे तो उसमें संगी असंगी के भव हो जाएंगे, तो उसमें पूर्वकोटि पृथक्त्व का प्रमाण कितना होगा, 95 पूर्वकोटि प्लस तीन पल्य, पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त में 47 हो जाएंगे, हाँ, और पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिमति में सात आठ और आठ 16 हो गए, 15 हो जाएंगे, संगी असंगी दोनों लेना प्लस तीन पल्य। मनुष्य त्रिक में पूर्वकोटि पृथक्त्व अधिक तीन पल्य, पर मनुष्यों में वो पूर्वकोटि का प्रमाण अलग होगा, 47 होगा सामान्य मनुष्यों के लिए, क्योंकि उसमें वो अपर्याप्त का भव लिया, मनुष्य पर्याप्तों में अपर्याप्त का नहीं लेते, 24 में से एक कम करना, 23 पूर्वकोटि और तीन पल्य, और मनुष्य नहीं के लिए 7 + 1, ख्याल में पूर्वकोटि का अलग अलग प्रमाण है, यानी उस मार्गणा का उत्कृष्ट काल लेना है, उसने बीच में उसने अनुत्कृष्ट किया ही नहीं ऐसा लेना है। सामान्य देवों में 33 सागर, सर्वार सिद्धि में तो 33 सागर होता ही होता है, और अन्य देवों में अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति, यानी सौदर में ईशान में साधिक 2 सागर कहेंगे, ऊपर जिसकी जिसकी जितनी स्थिति उसको बताएंगे। आयु कर्म का ओह के समान है, आयु कर्म के उत्कृष्ट स्थिति बंध जो है, तिर्यंचों में उत्कृष्ट स्थिति बंध तो 33 सागर का होता है नारकी का, और उत्कृष्ट आबाधा सहित होता है, तो उत्कृष्ट आबाधा पहले समय होगी, बाद में आबाधा एक एक समय से घटेगी, तो आयु के उत्कृष्ट स्थिति बंध का जघन्य काल कहो या उत्कृष्ट काल कहो, एक समय कहेंगे, इसलिए ओके समान बताया। विशेषार्थ, यह अनुत्कृष्ट स्थिति बंध का जघन्य काल एक समय बतलाने का कारण यह है कि विवक्षित पर्याय में उत्कृष्ट स्थिति बंध किया और दूसरे समय में अनुत्कृष्ट स्थिति बंध करके मरकर अन्य पर्याय में चला गया, यहाँ लिखा है ना, इससे यहाँ सर्वत्र स्थिति बंध का जघन्य काल एक समय प्राप्त हो जाता है। कौन से स्थिति बंध का, अनुत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट लिखना चाहिए। शेष कथन का अनुगम पूर्ववत है, यानी पहले समान समझना चाहिए। आगे बढ़ते हुए, पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त, मनुष्य अपर्याप्त, विकलेंद्रिय अपर्याप्त, पंचेंद्रिय अपर्याप्त, इंद्रिय मार्गणा में केवल पंचेंद्रिय कहेंगे, और त्रस अपर्याप्त जीवों में सात कर्मों के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थिति बंध का जघन्य काल एक समय है, उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, ये मार्गणा ही अंतर्मूर्त वाली है, तो कोई लगातार अनुत्कृष्ट करेगा तो भी अंतर्मूर्त होगा, और उत्कृष्ट का यथा योग्य अंतर्मूर्त होगा, एक समय से लेकर यथा योग्य अंतर्मूर्त तो होता ही होता है। अने दोनों का ही जघन्य काल एक समय, उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त। एक समय कैसे होगा अनुत्कृष्ट का? आयु के अंत में उत्कृष्ट करके फिर उसने अनुत्कृष्ट किया, फिर मर गया, मार्गणा बदल गई। मार्गणा बदलने की अपेक्षा एक समय घटित होगा। विशेषार्थ, इन सब पर्यायों में एक जीव के रहने का उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। इसी से यह अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त कहा है। यानी भले मनुष्य अपर्याप्त लगातार आठ भोग किए, फिर भी वो अंतर्मूर्त ही होता है। अब एकेंद्रियों में, एकेंद्रिय इन जनरल की बात है। अब मेरा यह प्रश्न है, एकेंद्रियों में अभी हमने देखा था ना, अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट काल कितना है? असंख्यात पुद्गल परावर्तन होगा क्या नहीं होगा? एकेंद्रिय योग्य उत्कृष्ट कहां होगा? बादर एकेंद्रिय पर्याप्त में होगा। तो बादर एकेंद्रिय पर्याप्त में उत्कृष्ट किया, भले एकेंद्रियों में लगातार असंख्यात पुद्गल परावर्तन तक रहा, फिर भी असंख्यात लोक काल के बाद वो डेफिनेटली वो उत्कृष्ट करेगा ही करेगा। अनुत्कृष्ट उससे अधिक एकेंद्रिय में रहते हुए नहीं होता। तीर्यंच कहने से पंचेंद्रिय एकेंद्रिय दोनों आ गए, ओव कहने से पंचेंद्रिय एकेंद्रिय सब आ गए, इसलिए वहां तो घटित हुआ था। अनुत्कृष्ट असंख्यात लोक से ज्यादा नहीं होगा, असंख्यात लोक, असंख्यात पुद्गल परावर्तन नहीं। यानी असंख्यात लोक काल के बाद लौटकर वह जीव फिर से दोबारा उत्कृष्ट करेगा ही करेगा। एकेंद्रियों के योग्य, एकेंद्रियों में रहने का उत्कृष्ट काल असंख्यात पुद्गल परावर्तन है, पर इतने लंबे काल तक वो उत्कृष्ट नहीं करेगा ऐसा कभी नहीं हो सकता। यानी वो बाकी तो अपनी अपनी स्थिति ले सकते हम, बांदर के निर्य पर्याप्त में वगैरह वगैरह। अभी हम इसको पढ़ेंगे तो ख्याल में आ जाएगा। देखो, एकेंद्रियों में सात कर्मों के उत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, जैसे हर सर्वत्र होता है वैसे। अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य काल अंतर्मूर्त है, जैसे ओग में भी देखा था हमने, वैसे यहां अनुत्कृष्ट का जघन्य काल अंतर्मूर्त बताया। परंतु यहां एक समय क्यों नहीं लिया? एक इंद्रिय में से अन्यत्र गया? हाँ? इसका अर्थ यही होगा कि अनुत्कृष्ट किए बिना वहां से नहीं निकलेगा, क्योंकि एकेंद्रिय या जघन्य पर्याय है, उसमें से द्विंद्रिय आदि में जाते हुए वो थोड़ा अनुत्कृष्ट बंद करके जाएगा, या उसका अर्थ होता है ऐसा लगता है। क्योंकि अपर्याप्त और हीन दशा है। देखो देखो, हम पढ़ेंगे पूरा, ख्याल में आएगा। अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य काल अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण है, क्योंकि जघन्य करने वाला कौन है? बादर केंद्र पर्याप्त है, वो सूक्ष्म में चला गया, ऐसे भी हो सकता है। और बादर केंद्रियों में अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य काल एक समय है, और उत्कृष्ट काल अंगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण है। ये बांदर का उत्कृष्ट काल हुआ अंगुल का असंख्यातवा भाग। यह बांदर एकेंद्रियों में जघन्य काल एक समय लिया, सामान्य से एकेंद्रिय में उन्होंने अंतर्मूर्त लिया। बादर एकेंद्रिय पर्याप्तकों में अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वर्ष है। क्योंकि बादर एक इंद्रिय पर्याप्तकों की बात है। बादर एक इंद्रिय पर्याप्त तो वो काय स्थिति नहीं लेना, क्योंकि बीच में वो एक भव के बाद फिर बीच में अपर्याप्त अवस्था होगी, परंतु फिर भी वो उसके मार्गणा बादर एक इंद्रिय पर्याप्त ही कहेंगे। संख्यात हजार वर्ष का उसका उत्कृष्ट काल है रहने का। बादर एक इंद्रिय अपर्याप्तकों में अनुत्कृष्ट स्थिति बंध का जगन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, क्योंकि उसमें रहने का काल ही अंतर्मूर्त है। सूक्ष्म एक इंद्रियों में अनुत्कृष्ट स्थिति बंध का जगन्य काल अंतर्मूर्त है। देखो ये बात सूक्ष्म एक इंद्रियों में अंतर्मूर्त बताया, और उत्कृष्ट काल अंगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण है। अंतर्मूर्त लिया, अनुत्कृष्ट स्थिति बंध का अंतर्मूर्त लिया। वो अंगुल का संख्या तो भाग है ना, बादर सॉरी सूक्ष्म एक इंद्रियों में रहने का उत्कृष्ट काल कितना है? सूक्ष्म एक इंद्रियों में असंख्यात लोक है, असंख्यात लोक, परंतु असंख्यात लोक भले काल हो पर वो पर्याप्त अपर्याप्त में रहने का काल है। अब यहां कहते कि और एक एक पर्याय में रहने का अंतर्मूर्त ही है, पर्याप्तों में भी अंतर्मूर्त रहेगा, अपर्याप्तों में भी अंतर्मूर्त रहेगा। उत्कृष्ट काल अंगुल के असंख्यातवे भाग, अनुत्कृष्ट का अर्थ क्या है कि अंगुल के असंख्यातवे भाग बाद वो उत्कृष्ट बंध करेगा ही करेगा, ये उसका अर्थ होता है। अभी कुछ पर्याय की विशेषता है ना यहाँ पर, सूक्ष्म एकेंद्रिय पर्याप्तकों में अनुत्कृष्ट स्थिति बंध का जगन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, क्योंकि उसकी मार्गणा का ही अंतर्मूर्त अंतर्मूर्ति उनकी आयु है। सूक्ष्म एकेंद्रिय अपर्याप्तकों में अनुत्कृष्ट स्थिति बंध का जगन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। ये सबसे हीन में हीन पर्याय कौन सी? सूक्ष्म एकेंद्रिय अपर्याप्त, और उनका जो उत्कृष्ट स्थिति बंध कब होगा? संक्लेश में। फिर से किसी भी पर्याय में उत्कृष्ट स्थिति बंध कब होता है? उस योग्य संक्लेश में होगा। तो वहां से मरकर ऊपर की ओर जाने वाला जीव विशुद्धि में ही मरेगा। फिर से अब एकेंद्रिय में हमने अंतर्मूर्त देखा था इन जनरल, तो एकेंद्रिय पर्याय छोड़कर कहां जा सकता है? द्विंद्रिय या पंचेंद्रिय कुछ भी जा सकता है। तो वहां अंत में वो अति संकलेश में मरेगा तो एकेंद्रिय में जाएगा, इसलिए उसको अनुत्कृष्ट का स्थिति बंध अंतर्मूर्त कराया है। भले मार्गणा बदल रही पर वो मार्गणा विशुद्ध की ओर जाती है, तो वो तो अनुत्कृष्ट करके जाएगा। उत्कृष्ट स्थिति बंध में वो एक समय में उत्कृष्ट किया फिर अनुत्कृष्ट किया और मर कर गया, ऐसा नहीं होगा। ख्याल में आती है ना बात? ये सभी मार्गणा देखो, सबसे जघन्य में जघन्य, इसमें से निकृष्ट मार्गणा कौन से? सूक्ष्म एक इंद्रिय अपर्याप्त। तो यहां से मरकर थोड़ी विशुद्धि हो जाए तो सूक्ष्म एक इंद्रिय पर्याप्त में चला जाएगा या बादर एक इंद्रिय में जाएगा, उसके लिए वो अनुत्कृष्ट का बंध अंतर्मूर्त करेगा। अगर सूक्ष्म एक इंद्रिय अपर्याप्त में ही रहना है तो मरण के एक समय वो कर सकता था। मार्गणा बदलेगी तो ही अंतर्मूर्त घटे करेगी। आप कहेंगे क्या उसके मरण के समय में अजगन्य नहीं हो सकता है, सॉरी अनुत्कृष्ट नहीं हो सकता? होगा तो भी वो सूक्ष्म एक इंद्रिय अपर्याप्त में ही जन्मेगा और वहां उसका आगे चलेगा। ख्याल में है ना बात? हाँ, ये सर्वत्र लगाना। सूक्ष्म केंद्रीय पर्याप्त में एक समय बताया था, क्योंकि वो तो उत्कृष्ट किया है, एक समय भले अनुत्कृष्ट किया, परंतु वो नीचे की यानी वो अपर्याप्त में जन्म सकता है, सूक्ष्म केंद्रीय अपर्याप्त में, तो उसके लिए तो दूसरा संभव है। ऐसे सब जगह लगा लेना। विशेषार्थ में क्या कहते देखते हैं, खुद्दा बंध में एकेंद्रिय जीव का उत्कृष्ट काल असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण अनंत काल दिया है, जिसको हम काय स्थिति कहते हैं। यानी एकेंद्रिय से मरकर एकेंद्रिय, एकेंद्रिय से मरकर एकेंद्रिय, वो कौन से पर्याय में गए उसकी बात छोड़ दो, तो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन। और इसी प्रकार सूक्ष्म एकेंद्रिय का उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण दिया है, किंतु यहाँ पर इनमें अनुत्कृष्ट स्थिति बंध का उत्कृष्ट काल क्रम से असंख्यात लोक प्रमाण है, और अंगुल के असंख्यात वे भाग प्रमाण बतलाया है। इसका कारण क्या है यह विचारणीय है। इन जीवों का खुद्दा बंध में जो उत्कृष्ट काल बतलाया है, उतने काल तक सात क्रमों का अनुत्कृष्ट स्थितिबंध नहीं होता, इसी से यह काल दिया है, शेष कथन सुगम है। देखो क्या कहना चाहते हैं, वो स्थितिबंध के कारणभूत परिणाम जो असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं, अलग अलग सब मिलकर भी असंख्यात लोक होते, तो इतने काल बाद लौटकर नियम से वो अन्य अन्य बंध करते हुए नियम से उत्कृष्ट तक आएगा ही आएगा, इसलिए भी असंख्यात लोक लेते हैं। यह उसकी चर्चा उन्होंने नहीं उठाई है। शेष कथन सुगम है, यानी वो तो थ्रू आउट एकेंद्रिय रहा, फिर भी उसका अनुत्कृष्ट लंबे काल तक क्यों नहीं चला, क्योंकि वो नियम से लौटकर उस भाव पर आएगा ही आएगा। उन्होंने केवल विचारणीय है इतना ही करके छोड़ दिया है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। देखो द्विंद्रिय तीन्द्रिय और चतुरिंद्रिय तथा इनके पर्याप्त जीवों में सात कर्मों के उत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य काल एक समय, उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वर्ष है, यानी उस पर्याय में रहने का उत्कृष्ट काल लिया। अब इसमें तो असंख्यात लोग घटित नहीं होता है, क्यों नहीं घटित होता है, क्योंकि उनकी काय स्थिति इतनी लंबी नहीं है, आयु कर्म का काल ओग के समान है, क्योंकि उत्कृष्ट स्थितिबंध उनके अपने आयु के वंथड बाकी है, पूर्व कोटि का करते हैं, तो पहले ही समय में आबादा घटित होगी उत्कृष्ट, इसलिए एक समय लिया। ये समझ में आई बात, यह अनुत्कृष्ट का एक समय इसलिए घटित होता है कि द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय वो एकेंद्रिय में जा सकते हैं, तो एक समय का अनुत्कृष्ट करके एकेंद्रिय में जा सकते हैं, ये बात बतानी है। अब 50 पृष्ठ पर आते हैं। पंचेंद्रिय यानी मार्गणा, अभी हमारी इंद्रिय मार्गणा की अपेक्षा पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय कहने से संगी असंगी दोनों आ गए, और पंचेंद्रिय पर्याप्त तथा त्रस और त्रस पर्याप्त जीवों में सात कर्मों के उत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य काल एक समय, उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त, वो प्रत्येक मार्गणा में तो हम उसके योग्य इतना ही देखा था। अनुत्कृष्ट की बात है तो हमने उसकी काय स्थिति ख्याल में लेनी है। अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य काल एक समय है, क्योंकि पंचेंद्रिय में से अनुत्कृष्ट एक समय करके वो तो चला गया नीचे के चतुरिंद्रिय तीन्द्रिय द्विंद्रिय एकेंद्रिय में, तो हो सकता है एक समय, और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है, तो अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति पंचेंद्रियों की कितनी है, तो हजार सागर प्लस पूर्व कोटि पृथक्त्व। पंचेंद्रिय पर्याप्तों के लिए पृथक्त्व 100 सागर होती, त्रस के लिए साधिक 2000 सागर, एक पूर्व कोटि लिखा है हमने, साधिक 2000 सागर प्लस एक पूर्व कोटि, अनुत्कृष्ट का हाँ उत्कृष्ट काल हाँ हाँ त्रस पर्याप्त के लिए 2000 सागर प्लस एक पूर्व कोटि लिया शादी त्रस सामान्य के लिए पण वो पृथक तो पूर्व कोटि कहते हैं ना 2000 सागर प्लस पृथक तो पूर्व कोटि एक पूर्व कोटि हमने भी यहाँ लिख के रखा है पण साधिक दो लिखकर फिर पूर्व कोटि लिया साधिक में पूर्व कोटि आ गए फिर पूर्व कोटि अलग क्यों लिखा हमने तो लिख के रखा ही है लास्ट टाइम दो हजार सागर प्लस पूर्व कोटि है क्या साधिक 2000 सागर
साधिक
फिर साधिक लिखने की जरूरत नहीं है ना
साधिक लिखो तो पूर्व कोटि मत लिखो
हाँ
लिखो
तो वही तो त्रस सामान्य 2000 सागर प्लस पूर्व कोटि बराबर है एक पूर्व कोटि यानी वो साधिक का ही प्रमाण एक पूर्व कोटि है साधिक निकालो 2000 सागर प्लस एक हाँ नहीं त्रस के लिए 2000 सागर प्लस एक पूर्व कोटि और त्रस पर्याप्त के अकेले पर्याप्त 2000 सागर हाँ साधिक का ही अर्थ एक पूर्व कोटि योग है ना अनुत्कृष्ट का अपनी अपनी उत्कृष्ट क्योंकि यहाँ अलग अलग चार बातें बताइए उसमें अपनी अपनी स्थिति हमने देख ली आयु कर्म का काल ओघ के समान है यानी उसके उत्कृष्ट स्थिति बंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय घटित होता है अब काय मार्गणाम में देखेंगे पृथ्वी कायिक जल कायिक अग्नि कायिक और वायु कायिक जीवों में सात कर्मों के उत्कृष्ट स्थितिबंध का काल ओघ के समान है एक समय से अंतर्मुख अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य काल एक समय है मरण के एक समय पूर्व में ले सकते हैं और उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण है क्योंकि इनकी स्थिति ही असंख्यात लोक है हर एक की पृथ्वी का एक में रहने का काल असंख्यात लोक है इस तरह से हर एक में इन चारों के बादरों में यानी बादर पृथ्वी का एक बादर जल का एक इस तरह से यहाँ वनस्पति का एक को छोड़ लिया है क्योंकि वनस्पति का एक में रहने का काल तो असंख्यात पुद्गल परावर्तन है परंतु उसमें जो यथायोग घटित होगा बाद में बताएंगे और इनके बादर लिए बादर निगोद नहीं लिए यहाँ पर इन चारों के बादरों में अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का उत्कृष्ट काल कर्म स्थिति प्रमाण है क्योंकि हमने देखा ना बादर एक इंद्रिय का उत्कृष्ट काल कर्म स्थिति प्रमाण होता है एक एक कायिक में भी उतना ही होता है इनके बादर पर्याप्त जीवों में इन्हें बादर पृथ्वी का एक पर्याप्त इस तरह से लेना है अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का उत्कृष्ट काल संख्यात 1000 वर्ष है इनके सूक्ष्म जीवों में यानी सूक्ष्म पृथ्वी का एक सूक्ष्म जल का एक इत्यादि अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का उत्कृष्ट काल अंगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण है हमने देखा ना सूक्ष्म में रहने का काल बड़ा होता है परंतु सूक्ष्मों में अंगुल के असंख्यातवे काल बाद नियम से वो उत्कृष्ट करेगा ही कर पहले बात आई थी एक इंद्रियों के बारे में तब उन्होंने बताया था तो सूक्ष्म कायिकों के लिए भी यही बात होती है और सूक्ष्म एकेंद्रियों के लिए भी यही बात लागू हुई थी सूक्ष्म पर्याप्तकों में सूक्ष्म पर्याप्त में लगातार रहेगा तो अंतर्मूर्त ही रहता है। उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थिति बंध का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। पर्याप्त लिया, सूक्ष्म अपर्याप्त को में हमने देखा था, अनुत्कृष्ट भी एक समय का नहीं होगा वहां पर। वनस्पति कायिकों में उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का काल एक योग के समान है। उत्कृष्ट का एक समय से अंतर्मूर्त और अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का काल एक योग के समान है, वहां पर अंतर्मूर्त से असंख्यात लोक लिया था। लिख लो, एक इंद्रिय लिख लो। अनुत्कृष्ट का जगन्य काल अंतर्मूर्त लिया था और उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण लिया था। असंख्यात लोक प्रमाण काल के बाद नियम से उसका उत्कृष्ट करेगा ही करेगा। अब यहाँ क्या देखा, देखो उसी कायिक में रहते हुए, वनस्पति कायिक में रहने का काल तो असंख्यात लोक प्रमाण है, असंख्यात पुद्गल परावर्तन प्रमाण, परंतु असंख्यात लोक काल के बाद फिर लौट कर नियम से उत्कृष्ट करेगा ही करेगा। तो अनुत्कृष्ट का अंतर्मूर से असंख्यात लोक, अब वनस्पति प्रत्येक कायिकों में, प्रत्येक वनस्पति तो बादर ही होती है, अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का उत्कृष्ट काल कर्म स्थिति प्रमाण है, जो हमने बादर पर्याप्तों में देखा था, सॉरी बादरों में देखा था कर्म स्थिति प्रमाण। ऐसे बादर वनस्पति कायिक में भी कर्म स्थिति प्रमाण है, 70 कोड़ा कोड़ी सब इनके पर्याप्तकों में अनुत्कृष्ट। हाँ देखो देखो, वनस्पति में उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट का एकेंद्र के समान बताया, अब वनस्पति प्रत्येक कायिक लिया, प्रत्येक कायिक कहने से उसके पर्याप्त पर्याप्त दोनों आ गए, परंतु प्रत्येक कायिक में कर्मस्थिति प्रमाण लिया है 70 कोड़ा कोड़ी सागर, देखिए वो बादर है ना, इनके पर्याप्तकों में अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का उत्कृष्ट काल संख्यात 1000 वर्ष है, क्योंकि वनस्पति प्रत्येक वनस्पति पर्याप्तों में रहने का उत्कृष्ट काल, एक भव हमने 10000 वर्ष का लेते थे, बहुत भव हो जाएंगे फिर भी संख्यात 1000 वर्ष हो गए। अब निगोद जीवों में उक्त स्थितिबंध का काल एकेंद्रियों के समान है, यानी सामान्य से निगोद कहेंगे तो निगोद तो सबसे हीन पर्याय हुए, उसमें बाहर आने के लिए अंतर्मूर्त तो को अनुत्कृष्ट करेगा ही करेगा, इसलिए जघन्य काल अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट असंख्यात लोक लेना है, क्योंकि निगोद में भले जीव इतर निगोद में रहने का उत्कृष्ट काल कितना है, इतर निगोद में रहने का दाई पुद्गल पर, फिर भी असंख्यात लोक प्रमाण काल के बाद वो नियम से उत्कृष्ट करेगा ही करेगा, जैसे एकेंद्र में देखा था हमने। इतनी विशेषता है कि इनके बादरों में यानी बादर निगोद में अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का उत्कृष्ट काल कर्म स्थिति प्रमाण है। हमने बादर एकेंद्र में भी देखा था ऐसा, या अलग अलग कायिकों में भी बादरों में भी देखा था कर्म स्थिति प्रमाण होता है। सूक्ष्म वनस्पति कायिक, सूक्ष्म वनस्पति कायिक ऊपर आया था ना, सूक्ष्म वनस्पति कायिक में सूक्ष्म लिया था कि नहीं लिया था, वनस्पति प्रत्येक लिया था, सूक्ष्म वनस्पति कायिक और सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त जीवों को छोड़कर, हाँ सूक्ष्म निगोद, सूक्ष्म वनस्पति कायिक तो निगोद ही होते हैं, पर्याप्त तो बाद में फिर दोबारा लिखा है ना, फिर से देखो सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त का अर्थ क्या है, साधारण। और सूक्ष्म वनस्पति का एक अपर्याप्त का अर्थ क्या है? वही है, इसीलिए एक बार अपर्याप्त निकाला हमने लास्ट टाइम, दो बार है इसीलिए एक बार निकालना है। देखो ऊपर लिखा, ऊपर देखो वो 75 लिखा है ना, उसके ऊपर सेकंड लाइन सुहम वनस्पति और सुहम निगोद अपजत्तम, एक ही बार लिखाना। तो सूक्ष्म वनस्पति कायिक, आगे का अपर्याप्त शब्द निकाल दो और सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त। सूक्ष्म निगोद कहो, सूक्ष्म वनस्पति को बात एक ही है, क्योंकि सूक्ष्म वनस्पति में निगोद ही होते हैं, प्रत्येक वनस्पति में सूक्ष्म वैरायटी होती ही नहीं है। तो सूक्ष्म वनस्पति कहो, निगोद सूक्ष्म निगोद कहो, बात ही एक ही है। सूक्ष्म वनस्पति कहने से सूक्ष्म निगोद आ गया और सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त आया, उसमें पर्याप्त अपर्याप्त दोनों आए थे। हाँ, जीवों को छोड़कर शेष अपर्याप्त जीव में शेष अपर्याप्त कौन से? प्रत्येक का अपर्याप्त लिया, उक्त स्थितिबंध का काल पंचेंद्रिय अपर्याप्तकों के समान है, यानी एक समय से अंतर्मूर्त होता है। क्योंकि ऊपर देखो, ऊपर से 1, 2, 3, 4, 5 छठी लाइन ली थी, सूक्ष्म पर्याप्त लिए थे, किसमें? कायिकों में सूक्ष्म पर्याप्त लिए थे। फिर से जरा सुनना बराबर, ऊपर जब हम पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक की बात कर रहे थे, उसमें सामान्य से लिए, फिर भी चारों के बादर लिए, फिर चारों के बादर पर्याप्त लिए, फिर चारों के सूक्ष्म लिए, फिर चारों के सूक्ष्म पर्याप्त लिए, पर सभी कायकों के सूक्ष्म अपर्याप्तों को छोड़ लिया था। वो यहां ले रहे हैं कि शेष अपर्याप्त जीवों का अर्थ ये होता है, एक समय से हाँ सूक्ष्म वनस्पति कायिक और सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त जीवों को छोड़कर, हाँ उनका अपना एक समय से अंतर्मूर्त था, निगोदों का, हाँ, और शेष में पंचेंद्रिय अपर्याप्तों के समान वो क्या होगा? वहां एक समय से अंतर्मूर्त होगा, नहीं नहीं उसमें अंतर्मूर्त होगा। यानी वो जगन्य और उत्कृष्ट दोनों अंतर्मूर्त होते हैं। फिर से मैं बताती हूँ, सूक्ष्म वनस्पति का एक और सूक्ष्म निगोद अपर्याप्तों में, अनुत्कृष्ट का जघन्य काल भी अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट काल भी अंतर्मूर्त, और शेष अपर्याप्त, शेष अपर्याप्त कौन से लिए? पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, सारे अपर्याप्त लिए, उनका एक समय से अंतर्मूर्त। इसका कारण समझते हैं, सूक्ष्म मार्गणा बदलती है परंतु हीन मार्गणा में जा सकते हैं। सूक्ष्म पृथ्वी कायिक मरकर सूक्ष्म वनस्पति कायिक में गया, यानी सूक्ष्म पृथ्वी कायिक अपर्याप्त जीव और वो सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त में उत्पन्न हुआ, तो हीन पर्याय में गया, तो अति संकलेश में मरकर जाएगा। तो उत्कृष्ट किया एक समय, अनुत्कृष्ट करके जा सकता है, परंतु वहां से ऊपर जाना है तो अंतर। अब ये जो सूक्ष्म निगोद जो है, सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त को या सूक्ष्म निगोद को, तो वो मरकर अभी बादर में जाना है या अन्य कायिकों में जाना है, तो अंतर्मूर्त तक अनुत्कृष्ट करके फिर जाएगा, अति संकलेश में फिर निगोद में ही जाएगा। मरण के समय में भी एक समय अनुत्कृष्ट करके नहीं जा सकता। ख्याल में आती ना बात ये? आयु का कालोप के समय, यानी वो एक समय घटित होता है। इसमें कोई प्रश्न है तो पूछना, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे हम। किसी भी मार्गणा से अपने और हीन मार्गणा में जाना है तो अनुत्कृष्ट का एक समय करके जा सकता है, परंतु वो संकलेश वाली मार्गणा, यानी संकलेश वाली मार्गणा है तो अंत नहीं विशुद्धि है ऊपर वाली मार्गणा में जाना है तो अनुत्कृष्ट अंतर्मूर्त करना पड़ेगा, एक समय करके जा सकता है क्योंकि वहां संकलेश अभी उत्कृष्ट के जैसे है, अभी उसके भले बंद अनुत्कृष्ट किया है पर उत्कृष्ट परिणाम हो गए संकलेश के, उसके परिणामों की बात देखें भले स्थिति बंद उसने अनुत्कृष्ट कर लिया है परंतु उत्कृष्ट जैसे संकलेश उसके चले गए। अभी नीचे का पैराग्राफ पांचों मनोयोगी। अब मनोयोग का काल योग का काल तो अंतर्मूर्त होगा, पांचों वचन योगी जीवों में सात कर्मों की उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थिति बंध का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है क्योंकि योग पलटने की अपेक्षा एक समय दोनों का ही घटित होता है। यानी पहले उत्कृष्ट किया अनुत्कृष्ट एक समय के लिया और मनोयोग से वचन योग में चला गया, अनुत्कृष्ट का अनुत्कृष्ट रहा पर मनोयोग में एक समय हो सकता है जब हम कोई योग की वगैरह अपेक्षा नहीं थी तो अनुत्कृष्ट हम अंतर्मूर्त करके फिर वापस उत्कृष्ट कर सकता है, इसलिए वहां अंतर्मूर्त जघन्य भी बात बताई थी। यहां योग में एक समय घटित हो सकता है दोनों का भी और अंतर्मूर्त उत्कृष्ट तो बताई गए। आयु कर्म के उत्कृष्ट स्थितिबंध का काल ओघ के समान है क्योंकि भले आयु बंध शुरू हुआ तो पहले ही समय में उसका आबादा उत्कृष्ट होगी तो पहले एक समय घटित हो ही जाता है। अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य काल एक समय, देखो आयु का हमेशा अनुत्कृष्ट का भी अंतर्मूर्त बताया जाता है परंतु ये योग पलट गया, मनोयोग में आयुबंध चालू किए और बदल का वचन योग का योग हो गया, आयुबंध चलता रहा, मनोयोगी के लिए एक समय ही अनुत्कृष्ट का बंद हुआ। हाँ हाँ योग बंद नहीं होता है, योग का काल देखो योग का काल है ना, पलट गया योग ना। हाँ उस योग में आयु जरूरत नहीं है भले अंतर्मूर्त बड़ा होता है, नहीं इससे वो सिद्ध नहीं होता, योग में कितना भी काल क्यों न रहा पर योग पलटने का समय आया था और उसने आयु बंद किया, समझ में आती है बात। और उत्कृष्ट काल तो अंतर्मूर्त बता ही गया, हाँ इसके कंपेरिज इससे नहीं हो सकती, इससे नहीं कर सकते हम, फिर भी वो छोटा होगा योग का काल। तो उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त बता ही दिया है। इसी प्रकार वैक्रिक काय योगी, क्योंकि उसमें भी वैक्रिक काय पलटकर मनोयोगी हो गया वचन योगी हो गया, उसमें भी एक समय तो घटित हो ही जाता है। आहार काय योगी और क्रोधादि चार कषाय वाले जीवों के जानना चाहिए क्योंकि जैसे योग पलटता है वैसे क्रोध मान माया लोभ भी पलटते रहते हैं। देखो वैक्रिक काय योगी लिया, हाँ वो मनोयोग होगा वचन योग होगा, हाँ जैसे मनोयोग कैसे एक अंतर्मूर्त में पलटता है वे वैक्रिक का योग पलटेगा, पर यहाँ औदारिक का योग को नहीं पलटाने वाला लिया, नहीं सामान्य से का योग लिया, एक इंद्रियों में तो एक ही योग कायम रहता है तो इसलिए उसको छोड़कर बातें आई। अंतर्मूर्त से ज्यादा नहीं रहेगा, अरे वो संगी पंचेंद्रिय है ना, तो संगी पंचेंद्रियों के तीनों ही योग अंतर्मूर्त में नियम से पलटते हैं, उनकी लेशा एक रहती है देवनारकियों में, योग तो पलटता रहता है। यानी वहां उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट का एक समय घटित होगा योग पलटने की अपेक्षा से, ऐसे क्रोधादि चार कषाय वालों में भी ऐसे समझना है क्योंकि अंतर्मूर्त से अधिक कोई भी कषाय नहीं रहेगा, वो पलटेगा नियम से। अब काय योगी जीव में काय योग कहने से काय योग कितने काल तक लगातार रह सकता है, काय योग असंख्यात पुद्गल पर आ, फिर भी असंख्यात लोग के बाद फिर वो तो नहीं, पर काय योग के लिए उत्कृष्ट नहीं होगा, असंख्यात पुद्गल परावर्तन ही अनुत्कृष्ट रहेगा, क्योंकि काय योग में उत्कृष्ट स्थिति बंधक कौन करेगा? संगी पंचेंद्रिय कहेंगे। हाँ काय सात कर्मों का देखो, काय योगी जीवों में सात कर्मों के उत्कृष्ट स्थिति बंधक का काल ऊघ के समान है, यानी उत्कृष्ट एक समय से अंतर्मूर्त, और अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य काल एक समय है, क्योंकि वहां पर भी कायोग पलटने की अपेक्षा ले सकते हम, यानी कायोग से कहां चला जाएगा? मनोयोग में, वचन योग में, तो एक समय तो वहां पर भी घटित होगा। और उत्कृष्ट अनंत काल है, जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है, यानी कायोग में रहते हुए, जैसे कोई भी कायोग है ना, औदारिक हो या वैकृत हो, कायोग कहलाता है। कारमान में गया तो भी वो कायोग का ही भेद है, यानी उसने वो तो बंद करके उत्कृष्ट का बंद किया और फिर चला गया एक इंद्रिय आदि में, और वहां जाके उसने इतने काल तक उत्कृष्ट का बंद नहीं किया, और कायोग के रहते हुए उसने फिर उत्कृष्ट बंद किया पंचेंद्रिय में आकर। तो तब तक क्या किया था? अनुत्कृष्ट बंद किया, यानी कायोगी के लिए उत्कृष्ट स्थिति बंद कहां होता है? पंचेंद्रिय में होता है। तो तब तक इतने काल कहां रहा? एक इंद्रियों में। तो वहां कौन सा बंद किया? अनुत्कृष्ट का किया। कारमान कायोग हुआ, औदारिक मिश्र हो, औदारिक हो, कुछ भी हो, कायोग में सारे आते हैं। हाँ। आयु कर्म का काल मनोयोगियों के समान है, अब सर्वत्र सेम है ना, उत्कृष्ट का जघन्य और उत्कृष्ट एक समय है, और अनुत्कृष्ट का नहीं, कायोग में जघन्य काल एक समय बताया था, इसलिए मनोयोगी कहा, योग के समान नहीं कहा। काय योग पलटकर मनोयोग हो जावे, वचन योग हो जावे, एक समय से अनुत्कृष्ट का एक समय से अंतर्मुर्त, हमेशा जहां मार्गणा नहीं पलटती है तो वहां अनुत्कृष्ट का भी हम अंतर्मुर्त देखते हैं, जघन्य और उत्कृष्ट। यहां योग पलटने की अपेक्षा एक समय जघन्य हो, यानी काय योग में था कोई भी औदारिक को वैकृत को, और उसमें एक समय के लिए आयु का बंद किया, अनुत्कृष्ट की बात है, और फिर उसके वचन योग में चला गया, आयु बनती रही, पर काय योग में एक ही समय घटित हुआ। इसी प्रकार नपुसक वेदी, क्योंकि नपुसक वेदी कहेंगे हम, तो नपुसक वेदी पंचेंद्रिय ने उत्कृष्ट बंद किया, फिर एक इंद्रिय में चला गया, तो असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल तक नपुसक वेद में रहते हुए उसने उत्कृष्ट बंद नहीं किया, अनुत्कृष्ट करता रहा, फिर नपुसक वेदी होकर ही पंचेंद्रिय हुआ और उसने उत्कृष्ट बंद किया, यानी अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट काल असंख्यात पुद्गल परावर्तन हुआ। और असंगी जीवों के जानना चाहिए, असंगी में भी असंगी के योग्य उत्कृष्ट बंद कौन करेगा? असंगी पंचेंद्रिय, फिर एक इंद्रिय आदि में चला गया, वही घटित होगा। इनके आयु कर्म का काल ओक के समान है, यानी इसके अनुत्कृष्ट का भी जघन्य काल अंतर्मूर्त ही होगा, क्योंकि वेद वो जैसे पलटना क्रोधमान माया लोग पलटते, वैसा वेद पलटता नहीं है, ये कहना चाहते। औदारिक कायोगी जीवों में, अभी औदारिक कायोग पहले केवल कायोग कहा था, अब औदारिक कायोगी जीवों में सात कर्मों के उत्कृष्ट स्थितिबंध का काल ओग के समान है, यानी एक समय से अंतर्मूर्त। अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य काल एक समय, क्योंकि औदारिक कायोग पलटकर अन्य कोई योग हो गया तो एक समय तो घटित हो ही जाता है, वचन योग मनोयोग होगा। और उत्कृष्ट काल कुछ कम 22,000 वर्ष है, क्योंकि औदारिक कायोग में लगातार रहने का, वो पृथ्वी का एक जो है, पहले औदारिक मिश्र में था फिर औदारिक कायोग में आया, तो अंतर्मूर्त कम 22,000 वर्ष हो जाएगा। आयु कर्म का काल मनोयोगियों के समान है, क्योंकि औदारिक का योग पलट जाएगा तो मनोयोगियों के समान हो जाता है, क्योंकि आयु बंध शुरू हुआ, अनुत्कृष्ट का एक समय घटित हो सकता है, बस ये बताना है। उत्कृष्ट का तो एक समय होता ही है हर एक का। औदारिक मिश्र का योगी, वैकृत मिश्र का योगी और आहारक मिश्र का योगी जीवों में सात कर्मों के उत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। अंतर्मूर्त कैसे लिया? क्योंकि उसके अंतिम समय मिश्र का योग के अंतिम समय में उसका उत्कृष्ट स्थितिबंध होता है। पहले हमने स्वामित्व में देखा था, ऊपर क्या लिखा है? ओरालिय मिस्स वेयुव्य मिस्स आहार मिस्स सत्तन्नम कम्माणम उक्कस जहन एक समय। हाँ हाँ, मार्गणा का काल अंतर्मूर्त बराबर है। अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट का तो जगन्य भी और उत्कृष्ट भी अंतर्मूर्त होता है। मार्गणा भले अंतर्मूर्त हो तो लगातार उत्कृष्ट नहीं होता है। स्वामित्व में हमने क्या देखा था? दूसरे समय में पर्याप्ति पूर्ण करेगा, नहीं शरीर पर्याप्ति, यानी औदारिक मिश्र के अंतिम समय में उत्कृष्ट होता है। तो एक ही समय के लिए उत्कृष्ट होगा, अंतर्मूर्त के लिए उत्कृष्ट कैसे होगा? देखो पेज नंबर, स्वामित्व निकालो, उत्कृष्ट का स्वामित्व चाहिए, योग चाहिए था ना, पेज नंबर 37। ऊपर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7वीं लाइन, वैकृत मिश्र का योग में, पेज नंबर 37, ऊपर से 7वीं लाइन, वैकृत मिश्र की पहले बात पढ़ लेते हम। मिला क्या? सात कर्मों के उत्कृष्ट स्थितिबंध का स्वामी कौन है? जो देव या नारकी, मिथ्या दृष्टि लेना ऑफ कोर्स, अनंतर समय में शरीर पर्याप्ति को प्राप्त होगा, ऐसा अन्यतर वैकृत मिश्र का योगी जीव सात कर्मों के उत्कृष्ट स्थितिबंध का स्वामी है, तो उसका उत्कृष्ट स्थितिबंध एक ही समय में हो सकता है, अंतर्मूर्त तक नहीं हो सकता। अब देखो आहार मिश्र में देखो नीचे, उसमें भी ऐसा ही समझना चाहिए, वहां पर भी लिखा तदनंतर समय में पर्याप्ति को प्राप्त होगा। अब औदारिक मिश्र की बात 36 पेज पर देखो, नीचे से चौथी लाइन, औदारिक मिश्र का योग में सात कर्मों के उत्कृष्ट स्थितिबंध का स्वामी कौन है? जो मिथ्या दृष्टि है, संगी है, तत्प्रायोग संक्लेश परिणाम वाला है और तदनंतर समय में शरीर पर्याप्ति को प्राप्त होने वाला है और तत्प्रायोग उत्कृष्ट संक्लेश रूप परिणामों से युक्त है, ऐसा अन्यतर दो गति का जीव सात, क्योंकि औदारिक मिश्र में दो गति में ही होगा, सात कर्मों के उत्कृष्ट स्थितिबंध का स्वामी है। समझ में आई बात? इसलिए हमने वहां प्रश्न चिन्ह डाला था कि वहां तो अंतिम समय में एक ही समय में लिया था, तो ये उपकस्य ने अंतमूत कैसे घटित होगा? अब जैसे कल हमने उत्तर प्रकृतियों में देखा था, देख लो उत्तर प्रकृतियों में काल है क्या? स्वामित्व तो देख लिया था, नहीं नहीं हमने स्वामित्व देखा, बंद काल देखो, उत्कृष्ट बंद काल 314 ऑनवर्ड्स ढूंढेंगे, मार्गणाओं में देखना है ना, काय मार्गणा, कौन सी मार्गणा है हमारी? योग मार्गणा, वैकृत मिश्र, अथवा हाँ, परंतु आपने कौन सा लिया? नहीं नहीं, योग मार्ग ना, और 325 पेज पर नीचे औदारिक मिश्र की बात हुई है। उसके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट जगन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त लिया है। अथवा कहकर दो विकल्प, एक सौ चौदह में क्या है बता रहे आप? एक सौ चौदह वहाँ विषय क्या है? दो अथवा कह के दो बात बताइए, अथवा कहा है उन्होंने वहाँ पर? आप जो 114 की बात कर रहे हैं, वो नाना जीवों की बात है, फिर भी जगन्य काल वहां अंतर्मूर्त बताया है। वहां पे हमने पूछा था एक समय क्यों नहीं, क्योंकि दो मत है। अब पेज नंबर 325, यानी ये भी उत्तर मिल गया, दो मत है उसमें। रेफर 325, देखो 325 पेज निकाला, उत्तर प्रकृतियों में बंद काल देख रहे हैं, मिला आपको 325 पेज लास्ट पैराग्राफ, औदारिक मिश्र का योगी जीवों में। अब ये लिस्ट बताई उसको छोड़ो, लास्ट लाइन है ना, उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थिति बंद का जगन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। ये नाना जीव है कि एक जीव है, पहले ये नक्की करो। नहीं, एक जीव की अपेक्षा ही बात चल रही है। ये अथवा कहकर दूसरा एक विकल्प बता, देखो इसी प्रकार देवगति चतुष्क के उत्कृष्ट अथवा तदनंतर समय में पर्याप्ति को पूर्ण करेगा, ऐसे समय में उत्कृष्ट स्थितिबंध करता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट स्थितिबंध का जगन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है तथा अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का जगन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। समझ में आई बात? ये क्यों, ये दो दो कथन है, दो मत है। नीचे का विशेषात पढ़ लेते हैं, देखो 326 पर, औदारिक मिश्र का योग में मिला क्या? नहीं तो मैं पढ़ती जाऊं और आपको पेज निकालते जाएंगे। विशेषात, औदारिक मिश्र का योग में सब प्रकृतियों के उत्कृष्ट स्थितिबंध का स्वामी कौन है, इस प्रश्न का उत्तर दो प्रकार से दिया है। मूल प्रकृति स्थितिबंध प्ररूपणा में स्वामित्व का विचार करते समय यह बतलाए है, जिसके अगले समय में शरीर पर्याप्ति पूर्ण होगी, ऐसा जीव उत्कृष्ट स्थितिबंध का स्वामी है। और इस उत्तर प्रकृति स्थितिबंध प्ररूपणा में स्वामित्व का विचार करते समय जो कुछ बतलाया है, उसका भाव यह है कि जो उत्कृष्ट संक्लेश परिणाम वाला या तद योग्य संक्लेश परिणाम वाला औदारिक मिश्र का योगी जीव है, वह अपने अपने उत्कृष्ट स्थितिबंध के कारणभूत परिणामों के होने पर उस प्रकृति का उत्कृष्ट स्थितिबंध करता है। इन्हीं दो विचारों के आधार पर यहाँ उत्कृष्ट स्थितिबंध का उत्कृष्ट काल दो प्रकार से कहा गया है। प्रथम विचार के अनुसार प्रथम दंडक और दूसरे दंडक में कही गई प्रकृतियों के उत्कृष्ट स्थितिबंध का जगन्य और उत्कृष्ट काल केवल एक समय उपलब्ध होता है, और दूसरे विचार के अनुसार वह कम से कम एक समय और अधिक से अधिक अंतर्मूर्त उपलब्ध होता है, शेष कथन स्पष्ट ही है। यानी अभी ये जो कारण है वो हमारे प्रश्नों का उत्तर है। ये रेफरेंस फॉर पेज 51 326 वहां लिख के रखो। ये जो हमारा प्रश्न चिन्ह था उसका ये उत्तर है। ऐसा भी हम सोच सकते हैं कि भले उत्कृष्ट संकलेश वहां पर होगा उसका, परंतु असंख्यात लोक प्रमाण अलग अलग परिणामों से उतना उत्कृष्ट स्थितिबंध होता है, जिसको हम ईषत मध्यम कहते हैं। परिणाम का संकलेश वहां पर हो गया, पहले से उत्कृष्ट स्थितिबंध अंतर्मूर्त उसको घटित कर सकते हैं। ये एक कारण हो सकता है, क्योंकि अलग अलग परिणामों से भी उत्कृष्ट बंध होता है, ये तो हमें मालूम है। अब यही बात यहाँ हमने जो क्वेरी जो लिया था ना, पेज 37 पर, नीचे लिखा था 1, 2, 3, 4, 5 छठी लाइन में औदारिक मिश्र, वैकरिक मिश्र, आरक मिश्र के लिए उत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य काल एक समय, उत्कृष्ट काल जो अंतर्मूर्त बताया था उसके लिए वो विशेषार्थ देखना है। कहाँ का 326 पेज, यानी वहां हमें वो एक्सप्लेनेशन है, और वहां उन्होंने इसकी भी बात बताई थी कि यहाँ ऐसा बताया वहां वैसा बताया। इसलिए अनुत्कृष्ट का भी, अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त लिया, क्योंकि अंतिम समय में एक समय में होता है, तो अनुत्कृष्ट तो अंतर्मूर्त तो रहेगा ही रहेगा। परंतु अनुत्कृष्ट को एक समय नहीं लिया है, ख्याल में आती बात ये, भले उसका स्थितिबंध वो उत्कृष्ट होता रहे अंतर्मूर्त तक उत्कृष्ट का, पर अनुत्कृष्ट अंतर्मूर्त होता रहे ऐसा नहीं लिया उन्होंने। यानी जघन्य एक समय नहीं होगा, अंतर्मूर्त होता है, एक समय में नहीं लिया है अनुत्कृष्ट का, एक समय नहीं लिया है। यानी दोनों जगह दोनों मत कैसे क्या लगाए पता नहीं है, परंतु वो बात वहां घटित कराई है उन्होंने। आगे इसी का विशेषार्थ शायद बताएंगे। हाँ अभी है ना समय थोड़ा। हाँ अभी जो हम पढ़ रहे थे 51 पेज पर, जहां से हमारे प्रश्न थे उसके आगे देखते हैं। औदारिक मिश्र में, औदारिक मिश्र में आयु बगा बंद हो सकता है। आयु कर्म का काल ओग के समान है, यानी उत्कृष्ट का एक ही समय है और अनुत्कृष्ट का, क्योंकि औदारिक मिश्र में आयु का बंध कौन करेगा? लब्ध्य पर्याप्त, तो आयु का बंध तो पूरा होगा ही होगा। औदारिक मिश्र से औदारिक हो जाएगा ऐसा तो नहीं कह सकते हम। अंतर्मूर्त तो अनुत्कृष्ट का काल होगा ही होगा, जघन्य भी और उत्कृष्ट भी। यानी उत्कृष्ट का एक समय और अनुत्कृष्ट का जघन्य उत्कृष्ट अंतर्मूर्त, जैसे ओग में देखा था वैसे। ये हो गया आयु कर्म की बात हो गई। आहारक मिश्र का योग में आयु कर्म का काल मनोयोग के समान है। देखो यहाँ आहारक मिश्र में आयु का बंध शुरू हुआ, परंतु वो आहारक का योगी हो गया, एक समय के लिए उसने आयु बंध चालू किया था और आहार का योगी हुआ, तो मिश्र में एक समय के लिए उसने आयु बंध किया। इसलिए अनुत्कृष्ट का भी एक समय घटित होता है, अंतर्मूर्त होगा, यानी एक समय से अंतर्मूर्त अनुत्कृष्ट का। उत्कृष्ट का तो एक ही समय लेता है सब जगह। कार्मण का योगी और अनाहारक जीवों में सात कर्मों के उत्कृष्ट स्थिति बंध का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है, क्योंकि कार्मण का योग में उत्कृष्ट बंध कौन करेगा? पंचेंद्रिय से पंचेंद्रिय में जाने वाला, संगी से संगी में जाने वाला, क्योंकि असंगी से आने वाला तो कम करेगा, तो एक समय के लिए कर सकता है, दो समय के लिए कर सकता है। अनुत्कृष्ट स्थिति बंध का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तीन समय है। एक सूक्ष्म एकेंद्रियों में तीन मोड ले सकता है, तो वहां अनुत्कृष्ट ही रहेगा। विशेषार्थ, औदारिक मिश्र का योग में आयु बंध लब्धि अपर्याप्तकों के ही होता है, इसलिए यहाँ आयु कर्म के अनुत्कृष्ट स्थिति बंध का काल ओग के समान बन जाता है, यानी जगन्य भी अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट भी अंतर्मूर्त। शेष जिन योगों में आयु कर्म का बंध कहा है उनका जगन्य काल एक समय होने से उनमें आयु कर्म के अनुत्कृष्ट स्थिति बंध का जगन्य काल एक समय कहा है, क्योंकि योग पलटने से लिया था। किंतु आहारक मिश्र कायों में कुछ विशेषता है। उसका यद्यपि जगन्य काल अंतर्मूर्त होता है, तथापि वहां आयु कर्म के अनुत्कृष्ट स्थिति बंध का जगन्य काल एक समय कहने का कारण यह है कि कोई जीव आहारक मिश्र कायों का एक समय काल शेष रहने पर भी आयु कर्म का बंध कर सकता है, इसलिए यहाँ एक समय काल बन जाता है। कार्मण का योगी और अनाहारक जीवों में उत्कृष्ट स्थितिबंध का स्वामी कौन होता है, इसका पहले विचार कर आए हैं। कौन होता है? संगी, पंचेंद्रिय मरकर संगी में जाने वाला। उसे देखते हुए ज्ञात होता है ऐसा जीव अधिक से अधिक दो विग्रह लेकर ही उत्पन्न होता है, क्योंकि उसको अधिक काल नहीं लगता, दो मोड़ से ज्यादा मोड़ नहीं लगते हैं। पंचेंद्रिय से पंचेंद्रिय, कहीं से भी पंचेंद्रिय में आ रहा है ना, तो उसके दो मोड़ से ज्यादा, भले एक इंद्रिय में से भी पंचेंद्रिय में क्यों ना आए, दो मोड़ से ज्यादा नहीं लगते। इसी से यहाँ पर सात कर्मों के उत्कृष्ट स्थितिबंध का उत्कृष्ट काल दो समय कहा है, शेष कथन सुगम है। अनुत्कृष्ट के लिए तीन समय इसीलिए लिया, वो तो सूक्ष्म एक इंद्रिय जीव तीन मोड़ ले सकते हैं। अब यहीं पर रुकेंगे, क्योंकि अभी वेद मार्गना चालू हो जाएगी अपनी। चावानी के ज्ञान ते सूझे लो पालो, सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो। मैं